परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का जो पत्र के माध्यम से अपनी गवाहियां, अपने प्रार्थना के विषय हम तक पहुंचाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब भी वचन को सुनकर अपने जीवन की आशीष की बातों को हम तक पहुंचाएंगे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने पाए और आपके साथ आशीषों को बांटने पाए। इस समय हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आंखों को, उनके कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, उन्हें एकाग्रतापन दें ताकि प्रभु जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन के लिए आत्मिक कारण बनने पाए। हाँ प्रभु, इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, अपने जीवन को नाश करना चाहते हैं। आप उनसे बातचीत करें ताकि वे जानने पाए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उन्हें छुटकारा देना चाहते हैं। पिताजी, आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यूहन्ना कहता है कि मसीह के नाम में अनेक हैं, परंतु सब सच्चे मन से उसके आज्ञा पालक नहीं हैं। यदि वे परमेश्वर के साथ उसके आज्ञा पालन और प्रेम द्वारा सहभागिता रखते तो वे हमारे साथ भी सहभागिता रखते, परंतु वे वास्तव में हम में के थे ही नहीं। वे पाखंडी विश्वासी हैं, वे वास्तव में मसीह के विरोधी हैं। अतः यह अति आवश्यक है कि हम अपने आप को जांचें कि हम विश्वास में हैं या नहीं। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, जो अनुग्रह का कार्य है, न कि व्यवस्था के विधि विधान के पालन का कार्य। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि यदि सुअर को नहला धुला कर, हार पहनाकर अच्छे स्थान पर रखा जाए तो भी जब उसे छोड़ा जाता है तो वह कीचड़ में लौटने के लिए चला जाता है, क्योंकि यही उसका घर है। परंतु परमेश्वर की संतान पाप से घृणा करती है। आज हमारे मन में पाप की जो स्वीकार्य धारणा है वह धर्मशास्त्र आधारित नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि आज कलीसिया के सदस्य अपने आप को परमेश्वर की संतान मान रहे हैं, क्योंकि वे कलीसिया के कामों में सक्रिय भाग लेते हैं, परंतु वे दीमकों से अधिक कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक वेश्या थी जिसका एक पुत्र था। वह बहुत बीमार हो गई। उसे ऐसा लगा कि वह मर जाएगी। अतः डर के मारे उसने अपने पुत्र को एक सेवक अर्थात पादरी को बुलाने के लिए भेजा। जा और किसी सेवक को अर्थात पादरी को बुला ला कि मुझे भीतर ले ले, अर्थात स्वीकार कर ले। वह बालक चलते चलते बहुत दूर निकल गया। अंत में उसे एक भव्य आराधनालय दिखाई दिया। उसने वहां जाकर दरवाजा खटखटाया तो पादरी साहब बाहर निकले। उसने पूछा, क्या चाहिए? उस बालक ने कहा, मेरी माँ मर रही है और वह चाहती है कि आप उसे भीतर ले लें। पादरी ने सोचा कि उसकी माँ नशे की हालत में कहीं पड़ी है, अतः उसने कहा, जाकर पुलिस को बुला ले। आज वैसे भी पानी बरस रहा है और आज मैं बाहर नहीं जाना चाहता। उस बालक ने कहा, उसने शराब नहीं पी है और वह घर में ही है। वह बहुत बीमार है, अतः वह चाहती है कि आप उसे स्वीकार कर भीतर ले लें। क्या आप घर चल सकते हैं? वह पादरी जानता था कि वह इनकार नहीं कर सकता, अतः वह छतरी लेकर उस बालक के साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर वे चरमराती सीढ़ियों से चढ़कर उस स्त्री के कमरे में पहुंचे। मार्ग में वह पादरी सोचता आ रहा था कि वह उससे क्या कहेगा, क्योंकि उसने तो सदैव यही प्रचार किया था कि हमें सुसभ्य और शिष्टाचारी होना है। उसने सोचा कि यदि वह उसे सुधारने को कहेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। उसे तभी स्मरण हुआ कि बचपन में उसकी माता उसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद को सुनाया करती थी। अतः उसने बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद को निकाला और उसके पास बैठकर पढ़ने लगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस स्त्री ने कहा, क्या मेरी जैसे स्त्री के लिए भी केवल उस पर विश्वास करना है? पादरी ने कहा, यही तो लिखा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:14 में लिखा है कि जिस प्रकार मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर लटकाया, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी लटकाया जाएगा। तुम्हें यही करना आवश्यक है। उसने मरते दम प्रभु यीशु को ग्रहण किया। बाद में उस पादरी ने यह घटना सुनकर और लोगों को सुनाकर कहा, मैंने उस स्त्री को ही नहीं अपने आप को भी भीतर लिया, क्योंकि वह मुक्त विचारक पादरी था। मेरे मित्रों, क्या आप भीतर हैं, प्रभु की निकटता में हैं? क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपने उस पर अपना मुक्तिदाता होने का विश्वास किया है, या आप यूं ही अपना जीवन बिता रहे हैं? कुछ लोग निश्चय ही मुझे लिखेंगे कि मुझे उनसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछना है, क्योंकि वे तो जन्म से ही कलीसिया के सदस्य हैं। मेरे विचार में आपको जांच करके देखना है कि आप विश्वास में हैं या नहीं। अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना अच्छा ही है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा जो खाता बही संभालते हैं खजांची बहुत बीमार हो गया और दूसरा खजांची आने तक हमें सोचना पड़ा, और हम सोच रहे थे कि हम बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं, परंतु वास्तव में ऐसा था नहीं। हम परमेश्वर के आभारी हैं कि हमने समय पर अपनी लेखा परीक्षा कर ली थी। इसी प्रकार कलीसिया के सदस्यों को भी अपने विश्वास की जांच करना है कि क्या हम विश्वास में हैं या नहीं। क्या आप वास्तव में मसीह यीशु में विश्वास करते हैं? कोई मुझसे कह सकता है, आप मुझे उद्धार से वंचित करवा रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं विश्वासियों की सुरक्षा में विश्वास करता हूं, परंतु मैं पाखंडियों की असुरक्षा में भी विश्वास करता हूं। हमें अपने आप को जांचना है कि हम किस प्रकार के विश्वासी हैं, हमारा विश्वास कहाँ स्थिर है। इस अध्याय के आरंभ में यूहन्ना ने स्पष्ट कहा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। हम उसकी दुर्बल, भंगुर, चुकने वाली, गिरने वाली अकिंचन संतान हैं, परंतु हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें हमारे पापों से धोता रहता है। पिता के पास हमारा एक सहायक उपस्थित है। जी हां, वह हमारे पक्ष में है, वह हमारी ओर से याचना करता रहता है। पद 3 में हमने देखा था कि परमेश्वर प्रेम है, जो इस पत्री की विषय वस्तु है। इस पत्री में प्रेम शब्द 33 बार काम में लिया गया है। यूहन्ना कहता है कि बालक प्रेम में चलकर परस्पर सहभागिता रखे। इसका अर्थ है कि उनका जीवन भिन्न है, उनका स्वभाव नया हो गया है, अब वे परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। आज्ञा पालन जीवन की परख है। उसकी आज्ञाओं के पालन करने से ही हम जान सकते हैं कि हम में जीवन है या नहीं। हमें उसकी आज्ञाएं मानना है और उसके वचनों पर चलना है। उसके वचनों पर चलने का अर्थ है कि हम उसके आज्ञा पालन से भी आगे जाना चाहते हैं। मेरे मित्रों, यूहन्ना व्यवस्था और अनुग्रह में अंतर स्पष्ट करता है। व्यवस्था में निर्देश है, ऐसा करो तो तुम जीवित रहोगे, परंतु अनुग्रह की अनिवार्यता है, यदि मनुष्य में जीवन है तो वह ऐसा करेगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य को परमेश्वर के लिए जीने से पूर्व परमेश्वर से जीवन पाना आवश्यक है। मनुष्य अपने पुराने स्वभाव में परमेश्वर के लिए नहीं जी सकता है। व्यवस्था और अनुग्रह में यही एक अमूल अंतर है। व्यवस्था कहती है कर, जबकि अनुग्रह कहता है विश्वास कर। यह एक ही लक्ष्य प्राप्ति के दो भिन्न मार्ग हैं। व्यवस्था के साथ समस्या यह है कि वह सफल न हो पाया, क्योंकि मनुष्य को पुराने स्वभाव के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव नहीं। हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यहूना कहता है कि वास्तविक जांच यह है, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में आनंद लेता हूं? क्या मैं उसकी आज्ञाओं को मानने में प्रसन्न होता हूं? परमेश्वर की संतान होने के नाते आप में नया स्वभाव है और अब आप उसे प्रसन्न करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप पाप में रहते हैं तो परमेश्वर और उसकी संतान के साथ सहभागिता आप नहीं कर सकते। नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जी हां, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से ढांक लेता है, परंतु हम यह न समझें कि हम पाप में रह सकते हैं और परमेश्वर तथा अन्य विश्वासियों के साथ सहभागिता कर सकते हैं। यदि हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य है तो यह भी हमारे विश्वास का आश्वासन है। मेरा अपना विचार तो यह है कि परमेश्वर का आज्ञा पालन ना करें तो हमारे मन में शांति ना होगी। ऐसी शांति काल्पनिक नहीं होती, यह दिखावे की नहीं होती है, यह झूठा विश्वास नहीं है, यह मन का भ्रम नहीं है, यह व्यर्थ का गर्व नहीं है, यह उग्रवादी नहीं है, यह तो वास्तव में सच्ची दीनता है। मेरे प्रियो, आपके उद्धार का आश्वासन और विश्वासी की अनंत सुरक्षा अलग अलग बातें हैं, वे एक नहीं हैं, यद्यपि वे परस्पर संबंधित हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं और वह अपनी भेड़ों को पहचानता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं और वह अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता है। वे कभी नष्ट ना होंगी, न ही कोई उन्हें प्रभु यीशु से अलग कर सकता है। यदि आप उसकी भेड़ हैं तो आप उसकी आवाज सुनेंगे, तब आप अपने उद्धार का अंगीकार करते समय घमंड नहीं करेंगे। आप यह नहीं कहेंगे कि आप महान हैं, आप कहेंगे कि आपका चरवाहा महान है। यह कैसा महान सत्य है। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हमारा यह अभिषेक पवित्र आत्मा का है, जिसे हम आगे चलकर पद 27 में देखेंगे। जब यूहन्ना कहता है, परंतु हमारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, यहां पर वह कहता है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र आत्मा से अर्थात पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। पवित्र आत्मा प्रत्येक सच्चे विश्वासी में अंतर्वास करता है और उस पर सब कुछ प्रकट करता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अतः हम में पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है, जो परमेश्वर के वचन में निहित भेद हम पर प्रकट करता है। हमारा अभिषेक किया गया है और प्रत्येक विश्वासी को उसके उद्धार का आश्वासन प्राप्त है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर से व्यवहार रखना चाहते हैं तो उसके पास आएं और उससे ज्योति मांगे, मार्गदर्शन खोजें और उसके द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन की विनती करें। यहां पर यूहन्ना कहता है, तुम सब कुछ जानते हो। यहोना के कहने का अर्थ है कि परमेश्वर की संतान होने के कारण आपको जो कुछ जानना है वह आपकी जानकारी के लिए निश्चित है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अकस्मात ही आत्मिक सर्वज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा की सहायता से आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर आपको परमेश्वर जो अनुभव प्रदान करता है, तब इन बातों में विकसित होना आपके लिए संभव हो जाता है, अर्थात आप उसमें बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर की अनेक संतान अनुग्रह और प्रभु यीशु के ज्ञान में बढ़ते हैं। मैंने अपनी सेवा के वर्षों में अनेक अयाजकीय मनुष्यों को ऐसा विकास करते हुए देखा है और मैं वास्तव में इस बात पर आश्चर्य करता हूं। अपने बाइबल अध्ययन के समय अर्थात प्रशिक्षण काल में मुझे एक कलीसिया में प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। वहां हमें एक वृद्ध महिला ने भोजन के लिए बुलाया। उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था और इस कारण वह आराधना में नहीं जाती थी। लोग उसे दादी जी कहते थे। किसी ने मुझसे कहा कि मैं दादी जी को बाइबल पढ़कर सुनाऊं। मैं प्रशिक्षण में पहले वर्ष का विद्यार्थी था, अतः मैंने सोचा कि मैं उसे अपना ज्ञान सुनाऊं। अतः मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसके लिए पढ़ा और उसे समझाना चाहा, क्योंकि उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। मैंने एक या दो टिप्पणी ही की होगी। मुझे ऐसा लगा कि वह मेरी बातें सुनकर ऊब गई है। कुछ समय बाद उसने कहा, हे युवक, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? उसने उस संदर्भ से संबंधित जो बात कही वह ना तो मैंने और न ही किसी अध्यापक ने कभी सोची थी। इससे पूर्व कि मैं पूरा अध्याय पढ़ पाता, वह कह रही थी और मैं सुन रहा था। मेरा मित्र चुप बैठा सुन रहा था। जब हम घर लौट रहे थे तब मेरे मित्र ने कहा, आप निश्चय ही दादी के लिए सहायक सिद्ध हुए। मैंने कहा, उसने यह सब कहां से सीखा? मेरे मित्र ने उत्तर दिया, क्या आपने कभी सोचा कि पवित्र आत्मा उसका शिक्षक है? हमारे शिक्षक तो उचित नहीं है। यूहन्ना कहता है कि हमें पवित्र आत्मा को शिक्षक बनाना है। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप सीखेंगे या नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है। मेरे मित्रों, आज हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए यह अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ें, और हम जिन बातों को नहीं समझते हैं उससे हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगें, क्योंकि वही हमारा शिक्षक है जो हमें सब बातों को सिखाता और समझाता है। हम बिना उसकी सहायता के परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते। यही कारण है कि पौलुस कहता है कि संसार के लोग परमेश्वर की बातों को नहीं समझते, परंतु परमेश्वर के संतान इन बातों को समझते हैं। आज मुझे और आपको इस बात पर विचार करना है। मेरे श्रोता मित्रों, आप अपने जीवन पर विचार करें कि आप कहां पर हैं। आप परमेश्वर के वचन को किस रीति से पढ़ते हैं? क्या आप उसके वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं? यदि नहीं, तो आज से आप निर्णय लें और पवित्र आत्मा से कहें कि वचन को समझने में आप सहायता करें। वह आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर की सत्यता को समझ सकें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमारे श्रोता भाई बहनों से बातचीत किया है। हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि हम अपने आप से जीवित वचन को नहीं समझ सकते, परंतु आपके अभिषेक के द्वारा, नया जन्म के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही हम आपके वचन को समझ सकते हैं। हमारी विनती है प्रभु जी, जितने भी हमारे प्रिय श्रोता भाई बहन इस समय आपके वचन को समझना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता पाना चाहते हैं, नया जन्म का अनुभव पाना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके दिल और मन में कार्य करें, उनसे बोले और बातचीत करें, उनकी सहायता करें, ताकि प्रत्येक जीवन आपके वचन की गंभीरता को समझ सके, आपसे प्यार कर सके और आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाए। पिता परमेश्वर, जिस रीति से अब तक आपने हम समूह को संभाला है, वचन के ज्ञान में अपनी निकटता में आने में आगे भी आप हमारी सहायता करें, ताकि प्रत्येक जीवन आप में बलवंत होने पाए। इस घड़ी फिर से एक बार हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और हम चाहते हैं प्रभु आप हर एक को आशीष दें, ताकि प्रत्येक का जीवन आप में बलवंत होने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। कृपया निरंतर परमेश्वर के वचन में बने रहें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगते रहें, वह आपको अवश्य ही आशीषित करेंगे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।